Vamos, Chanti. तो अभी हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ कुछ लिखे हैं, बट अब डायरेक्ट पूछेंगे तो अच्छा होगा। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो तो हम उसकी चर्चा करेंगे, और उसी चर्चा में जो प्रश्न नहीं पूछे उनके भी उत्तर आ जाएंगे। तो एक एक से चालू करेंगे। माइक किसके पास है? कुछ भी।
ओम शांति
ओम शांति।
भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ टाइम रिसेंट कभी कभार होता है कि न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं बीच में, तो एडिक्शन जो आपने कल बताया है, ठीक है, बट एक फ़र्क ये पड़ता है कि काफ़ी टाइम ठीक है न्यूज़ देख रहे हैं, समझ में आता है जियो पॉलिटिक्स हर चीज़, तो जब भी देश के अगेंस्ट में बात होती है ना तो वो बुरा लगता है। हमें ये पता है कि ठीक है विनाश होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, ऐसे ही प्रोसेस है, ये होना है और यही सही है, वो सही होगा आगे जाके, क्योंकि होना तो यही है, बट फिर भी एक थोड़ा सा तो रहता है ना कि हो तो मेरे ही देश को रहा है, तो ये एक थोड़ा सा बुरा लगता है वो, तो इसके बारे में कोई दवाई?
दवा इसमें दो बातें हैं। सबसे पहला है न्यूज़ एडिक्शंस। बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया, सीजेपी ने क्या किया, अभी और कहाँ प्रदर्शन चालू है, इस मीडिया ने क्या कहा, इस एंकर ने क्या किया, इस एंकराइन ने क्या कहा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला तो टू मच न्यूज़ में जाना नहीं है, और न्यूज़ के जो है ना, पर करंट अफेयर्स भी यू शुड नो। तो उसके लिए एक DLS चैनल है जो हम देखते हैं, उसमें सुबह 5 बजे 50 खबरें आ जाती है करंट अफेयर्स। वो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें सब आ जाता है। DLS न्यूज़ यूट्यूब जैसे है, जैसे आपको दिखाते हैं, तो इसमें बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे ही आ जाता है। तो सारे न्यूज़ चैनल अगर आप देखते रहो और सारे न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहो तो दिमाग ख़राब हो जाएगा।
और ये
इतने न्यूज़
YouTube
चैनल से
पर
इतने न्यूज़ चैनल से इतने न्यूज़ चैनल से चैनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक प्रो गवर्नमेंट, एक अगेंस्ट गवर्नमेंट। दो तरह के चैनल्स हैं, एक को गोदी मीडिया कहा जाता है और दूसरे जो चैनल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो पहले उधर थे, जैसे रविश कुमार, जैसे अभिषार शर्मा, ध्रुव राठी उधर जर्मनी बैठ के, और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, अंजुमन जी, ऐसे बहुत सारे, और वो गवर्नमेंट वाले चैनल से। तो उन दोनों के बीच में निरंतर लड़ाई है। आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? वो ना तो बीजेपी का है, ना ही वो कांग्रेस का है, वो किसी भी पार्टी का नहीं है। हमारा निश्चय या हमारी निष्ठा संविधान से हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरा, ये सारी चैनल्स में सब एक अगर घटना होती है तो उसके 50 इंटरप्रिटेशंस होते हैं। वो कहेगा ऐसा हो रहा है, वो कहेगा एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ एजेंट है, से लेके तो सब कुछ चालू हो जाएगा उसमें। तो वो सत्य क्या है वो किसी को भी नहीं पता, और यहाँ कौन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला हमको थोड़ा सा न्यूज़ चैनल, जैसे इसमें आ नहीं रहा है, अभी नेट नहीं है इधर ठीक से। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं हो कि हमें कुछ भी पता नहीं देश में क्या चल रहा है। तीन चार चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। सबसे पहला, अपने घर में क्या चल रहा है। दूसरा, अपने डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ऑफिस और डिपार्टमेंट। तीसरा, आपके शहर में क्या चल रहा है। चौथा, ब्रह्मा कुमारीज में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो चल रहा है वो वैसा नहीं चल रहा है जो दिखाई दे रहा है। अंदर और बाहर बहुत सारी झटके हैं, वैसा नहीं है जो दिख रहा है। उसके बाद में देश में क्या चल रहा है, उसके बाद में विदेश में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। तो जैसे ये एक जो चैनल है DLS, इसमें हर दिन का जस्ट आधे घंटे में पूरा आ जाता है, सुबह 6 बजे वो ये कर देता है। हाँ, तो हाँ, करंट अफेयर जो IAS और ये सब की UPSC एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये तो कंपलसरी है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये आप एक बार देख लिया, हो गया, बस खत्म, ज्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं। जैसे ये आज का है
हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 6 अगस्त 2026,
तो ये एक ही
गुरुवार,
आधे घंटे
दिल्ली
में,
राष्ट्रपति
25 मिनट
भवन।
में उसमें सारी खबरें हैं पूरा, जहां जहां आज सुबह से क्या क्या हो रहा है। तो अगर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी और उनको तो ये दे शुड नो बाय हार्ट, उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सारा। अभी अगर करंट अफेयर जानना है तो ये एक ऐसे बहुत सारे होंगे और भी जो 15 मिनट्स आधे घंटे में सारी खबरें बस उतना सुन लिया बस हो गया, फिर और उसके डिटेल्स में जाना ही नहीं है। इधर ये हुआ क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ होते रहेगा, हर दिन नई नई नए इवेंट्स हो गए। अभी झारखंड में पेपर लीक हो गया, फिर इधर पेपर लीक, फिर उधर पेपर लीक, फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रहे हो, फिर मीम्स बन रहे हो उसके ऊपर, फिर कोई चैनल कुछ दिखा रहा है, कोई चैनल कुछ दिखा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हमें उसमें से केवल अपने काम का ले लेना है और छोड़ देना, ये पार्ट वन। दूसरा आपने और एक पूछा था, और भी कुछ पूछा नहीं, देश विरोधी। तो हमारा ये जो मैंने लेवल्स बताए, घर, डिपार्टमेंट, अपना शहर, देश, ब्रह्मा कुमारीज, तो हमारा इन सब से भी अटैचमेंट है। हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में हमारा इनमें से किसी से भी अटैचमेंट ना हो, इवन ब्रह्मा कुमारी से, यज्ञ से हमारा अटैचमेंट ना हो, इस सेंटर से भी हमारा अटैचमेंट ना हो, हमारा अपने लौकिक घर, अपना डिपार्टमेंट। हमें याद है जब हम उधर एक जगह काम कर रहे थे मधुबन से पहले, तो वहाँ इतना करप्शन था वो हमसे देखा नहीं जाता था। तो मतलब एक पॉलिटिकल लोग थे वहाँ पे सारे। जैसे एक पेशेंट आया और 5 मिनट में डेथ हो गई पेशेंट की, 100 लोग थे हॉस्पिटल के सामने। इस टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर सब बिल्डअप होता था। हमारे सर ने मुझे एक चीज़ कही थी कि अपना रेजिग्नेशन लेटर जेब में रखने का, ज़्यादा कुछ हुआ ये लो मैं जा रहा हूँ, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। हमारा क्या अटैचमेंट हो जाता है, हर चीज़ में अटैचमेंट हो जाता है। तो हमें मेंटली जो डिपार्टमेंट है जहाँ हम काम करते हैं, देश, अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको कहूँ भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हो, कौन जीतना चाहिए? इंडिया जीतना चाहिए। क्यों? वासुदैव कुटुंबकम, आप विश्व कल्याणकारी हो या भारत कल्याणकारी हो? क्योंकि वहाँ की आत्माएं नहीं है, वो शिव बाबा की संतान नहीं है। हाँ, तो आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस, भारत क्यों? तो फिर तो भारत के खिलाफ अगर सारे देश मिलके कुछ कुछ कहे, हाँ ये एक अलग बात है, देश प्रेम, देशभक्ति, पर उसके निर्णय करने वाले बैठे हैं सत्ता में, हम अगर चाहे भी तो क्या करूँ? मतलब अगर अमेरिका ने कुछ कह रहा है उधर से, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहा है, तो व्हाट यू विल डू? क्या करोगे, किससे लड़ाई करोगे? उस काम के लिए दूसरे लोग नियुक्त है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, वो करेंगे उनको जो करना है। हमको हर चीज़ में सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप हर चीज़ में सोचे कि मैं करूँगा, तो फिर तो आप ये आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। अध्यात्म का वास्तव में पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर जो उसमें जाता है तो वो इधर नहीं आ सकता फिर, क्योंकि वहाँ तो पक्ष विपक्ष आपको बहुत बुराई करनी पड़ती है, तभी आप अच्छे नेता माने जाओगे। डिबेट होती है, आप वैसे माँ अच्छा अच्छा ठीक है आप भी राइट है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग डिबेट कर रहे थे, बड़ी रहमदिल वाली डिबेट थी हमारी। डिबेट ऐसी नहीं होती, आर पार होती है, लोग माइक तोड़ के भागते, उनको ये कर देते, नहीं करना है तुम्हारा डिबेट, ये सब होता है उसमें। तो चलो वो सब हमको नहीं करना है, पर ध्यान रखना है ये जो लेवल्स है अलग अलग, हम इनसे भी डिटैच्ड हो, भारत से भी डिटैच्ड हो। पर भारत में हमारा बड़ा मोह है एक अलग प्रकार का, और वो होना भी चाहिए एक रीति से अगर देखा जाए तो, देखा जाए तो, क्योंकि जो देव कुल की आत्माएं होंगी उनका भारत से मोह होगा ही, वो देशभक्ति होगी। जितने क्रांतिकारी थे, झांसी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे से लेके, तो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु से लेके, अशफाक उल्ला खान से लेके, तो रामप्रसाद बिस्मिल, ये सब यहीं है, हो सकता है यहीं बैठे हैं। काकोरी कॉन्स्पिरसी वाले यही होंगे कहीं, 3-4 वो हो सकते हैं, वहाँ यही है। कहाँ खजाना लूटा है एक बार जाके देख लेंगे तो पता भी चल जाए। वही कह रहे हैं कि जिनको देश से प्यार था, सुबह चाणक्य को सुना, वो चाणक्य कहाँ है? इधर ही है। इतना भारत के लिए प्रेम, अखंड भारत का जो स्वप्न देख रहा है वो वही देख सकता है जो जिसने अखंड भारत देखा है। तो जितने क्रांतिकारी थे, देश प्रेमी थे, वो सारे ये थे, इसी कुल में है अभी। एक तो ये पॉइंट, दूसरा अगर हम सत्ता में हैं और हमारी वो जिम्मेदारी है तो ठीक है, बाकी हमारा लक्ष्य भारत नहीं है, हमारा लक्ष्य विश्व है। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, विवेकानंद ने कभी कहा है। मेरा इंटरेस्ट केवल भारत नहीं है, इंटरनेशनल है, सकल सकल विश्व की आत्मा है, सकल जन जितने भी है सब हमारे हैं, ब्रदरहुड फादरहुड सब 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 मेरे हैं, कोई अकेला देश मेरा नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने भारत देश में जन्म लिया इसलिए मेरा है। हो अगर आपने अफ्रीका में जन्म लिया होता तो फिर क्या कहते हैं वो, उसके लिए सोचते। आप पाकिस्तान में आपने जन्म लिया होता तो आप पाकिस्तान के लिए सोचते। अभी आप अभी कुछ सालों में जन्म लिया होता तो जो बचपन से पूरा भारत, हम जैसे उनको एंटी नेशनल कहते हैं, हम जैसे उनको आतंकवादी कहते हैं, वो हमको आतंकवादी कहते हैं। उनकी सारी मूवीज़ में भारत आतंकवादी दिखाया गया है, हमारी सारी मूवीज़ में पाकिस्तान आतंकवादी है। वो स्वीकार थोड़ी ना करते हैं, वो नहीं स्वीकार करते, उनका तो अलग ही व्यू है। और दे आर ऑल्सो राइट, वी आर ऑल्सो राइट, पर उसमें भी कुछ बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, ऐसे नहीं है ना। उनमें भी अमन पसंद, उनके भी लोग हैं कि जिनको ये सब वो जानते हैं अंदर का। तो भारत से प्यार होना अच्छी बात है, पर भारत से भी लगाव ना हो, उस लगाव से भी मुक्त, भारत के लगाव से मुक्त, यूपी के लगाव से मुक्त, लखनऊ के लगाव से मुक्त, अपने लौकिक घर से लगाव से मुक्त, ब्रह्मा कुमारीज के लगाव से मुक्त, अपने सेंटर के लगाव से मुक्त, अपने डिपार्टमेंट के लगाव से मुक्त। सेवा सब करते रहना पर मेंटल रेजिग्नेशन दे के रखना है, तो दुख नहीं होगा। इसको कहते हैं मेंटल रेजिग्नेशन। हाँ आप अटैच होंगे तो दुख होगा, दीदियों से अटैच होंगे आप, उनसे अपेक्षा करेंगे ये हमको ये दे वो दे तो दुख होगा फिर, अगर वो ना दे तो इवन ब्रह्मा कुमारियों से भी डिटैच्ड, ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी डिटैच्ड, अपने लौकिक डिपार्टमेंट से, अपने ऑफिस से जहाँ आप काम करते उससे भी डिटैच्ड, अपनी एक इंडिपेंडेंट यात्रा रखनी है, बाकी कर्तव्य सारे करते रहने और वो अपने आप होंगे। नेक्स्ट माइक देते जाओ। एक ही प्रश्न में मैंने कहा ना बहुत सारे उत्तर आएंगे, वहीं बाजू में कुछ भी प्रश्न कैसा भी, टाइम कम है हमारे पास, पूछते जाओ तो हम उस पर चर्चा कर सके।
हेलो भाई जी, भाई जी ओम शांति। जैसे कि कभी कभी होता है कि सुबह 4 से 5 के बाद बहुत अच्छा योग करने के बावजूद भी अगर हम हल्की सी झपकी ले लेते हैं कभी आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए, तो उसमें इतना डेंजर स्वप्न आता है कुछ कहने को नहीं। कभी कभी ऐसा हुआ है।
स्वप्न जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। एक स्वप्न जो होता है वो
और वही टाइप का
पूर्व जन्म का आता है पहला। दूसरा स्वप्न होता है जो आपने दिन भर किया कुछ भी रैंडम, जब ऐसे अभी यहाँ बैठे हैं तो आपको हो सके स्वप्न आ जाए कि मैं सब सभा में बैठा हूँ, ये कुछ भी रैंडम सपना आ जाए। तीसरा स्वप्न होता है जो आपने दमन किया है दिन भर, अगर काम वासना का दमन हुआ तो कामुक स्वप्न आएंगे, भोजन का दमन किया भोजन के स्वप्न आएंगे। कुछ स्वप्न जो होते हैं वो जिसको कहते हैं भविष्य वाले आते हैं, वो सबको नहीं आते, भविष्य में क्या होने वाला है पहले दिख जाता है, कुछ कुछ को होता है ऐसा। और कुछ स्वप्न होते हैं अति चेतन से आते, सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। तो ड्रीम्स 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। करना क्या है, जैसे एक गुरु जा रहा है और वो कहता है मैंने एक स्वप्न देखा, क्या तुम मुझे उसका उत्तर बताओगे, गुरु पूछता है अपने शिष्य से। शिष्य कहता है गुरु जी 1 मिनट रुको आप बैठो मैं आता हूँ। वो चाय लेके आता है, चाय पिलाता है, कहता है आपको चाय की आवश्यकता है। बोलते हैं बहुत अच्छा, अगर तुमने मेरे ड्रीम का इंटरप्रेट किया होता तो उनको घर से इधर सेंट आश्रम से बाहर निकाल दिया होता। स्वप्न आया उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दो और छोड़ दो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि उसमें कुछ भी दिखेगा, किसी भी जन्म का रैंडम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिखेगा। आपको अगर दिख जाए कि मैंने किसी का खून कर दिया मार दिया और मैं भाग रहा हूँ, आप क्या करोगे, सोचोगे अरे मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों है, ज़रूर किसी जन्म का पाप होगा, चालू हो गया इंटरप्रिटेशन। तो कुछ भी ये स्वप्न जो आते हैं उनको वो आधे घंटे के अंदर भूल जाते हैं, बाद में याद नहीं रहते। हाँ अगर आपने उठ के तुरंत लिख दिया तो याद रहेंगे, बट ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक इसको भी आयरनोलॉजी ऐसा एक टर्म है इंग्लिश में वो कहा जाता है, बट फिर से वही प्रश्न वही आता है, ठीक है मुझे अभी ड्रीम आ गया, जैसे एक बहन कहती है 4 बज गए और मुझे बाबा के स्वप्न आ रहे हैं, अमृत वेला मैं बाबा के साथ हूँ, अभी आंखें खोल के देखे 4 बज रहा है पर स्वप्न चल रहा है, तो क्या मैं बाबा का साथ छोड़ दूँ जो स्वप्न में चल रहा है और अमृत वेला करूँ उठ के? स्वप्न दिख रहा है जिसमें बाबा साथ है, ठीक है उत्तर है ये भ्रम है तुम्हारा, उठ के बैठना है। और जो अमृत वेले के बाद का समय है वो समय है जिम का, सीधा जिम का सब्सक्रिप्शन ले लो 5 से 6, गो टू जिम एंड स्टार्ट डूइंग जिम। वो बॉडी बिल्डर के लिए नहीं, बिल्डिंग बनने के लिए, बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं। उसमें 2 काम होते हैं, एक तो कान में ईयरफोन लगा के रखो, कुछ लेक्चर या कुछ क्लास सुनना, एक या मुरली ऑडियो, दूसरा एक्सरसाइज। बजाय इसके कि जाके सो जाओ, सोएंगे तो फिर ये सब झंझट चालू हो जाती, सपना आएंगे खतरनाक सपना। हाँ वो कभी कभी, रोज थोड़ी ना आते, एक बार आएगा पर खतरनाक आएगा जिसका प्रभाव रहेगा फिर। माइक
प्रभाव ही बहुत है, सारा दिन प्रभाव चला है उसका।
हाँ वही, क्योंकि आपने उसको बड़ा सीरियसली ले लिया ना, सिर्फ सपनों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सपना मतलब ये वोडाफोन का मैसेज, एयरटेल का मैसेज, क्या करते हो उसका? अच्छा एयरटेल का मैसेज है, अच्छा क्या है ये ऑफर के लिए अभी रिचार्ज करो से पाए, ये इसको क्या करें? मैं पढ़ू क्या इसको? इसका काम है डिलीट, ये करना होता है उसके साथ। स्वप्न आया डिलीट, उसको ज़्यादा खींचना ही नहीं है, फालतू है वो, वेट वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ भी आ रहे है वो। जो आपने किया आज वही स्वप्न में आता है, तो इसलिए अच्छा करते जाओ। जैसे इंक की बॉटल है, इंक की बॉटल है, ये इंक खत्म हो गया है, इसका इंक बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? नल के नीचे रखते हैं, नल के नीचे रखने के बाद पानी जा रहा है, पहले क्या आएगा? इंक की वाटर, सारा इंक इंक वाला पानी आएगा, रखते रहो। और अगर आपने कहा अरे ये क्यों आ रहा है, हटाओ, ये तो खराब हो रहा है, वहीं रखे रहो, पानी जाते जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने आप साफ होगा। इसलिए ज्ञान, योग, सेवा, विकारी स्वप्न आ रहे हैं आने दो, वो जो हो रहा है होने दो, ये करते जाना, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। नेक्स्ट,
मुझे पूछना था जैसे आपने साथ साथ संगठन को कैसे मजबूत करें?
आपको सोचना ही नहीं है संगठन का, स्वयं का सोचना है बस, दूसरों का ज़्यादा सोचेंगे तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आप ये सब काम हमारे नहीं है, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको केवल स्वार्थी भव स्वार्थी भव, स्वार्थ शब्द जो है ना बहुत आध्यात्मिक शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है, उसका अर्थ होता है स्व के मुक्ति के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, अर्थात स्वार्थ शास्त्रों की परिभाषा। वो शब्द गलत हाथों में चला गया और गलत मिसइंटरप्रेट हो गया और उसका अर्थ कुछ और ही बन गया, इंग्लिश में उसको सेल्फिश बनने लगा। तो दूसरों को, हमको संगठन को शक्तिशाली नहीं बनाना है, हमको सबसे पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाना। दूसरा, हाँ अगर ऐसी इच्छा है तो 2 लोगों से चालू करो, हर संडे मिलो, मुरली डिस्कस करो, बैठो चर्चा करो, चिंतन करो, कुछ एक्सचेंज करो, ग्रुप बनाओ। अभी हमारे मेरे जो व्हाट्सएप में ग्रुप है वो किसी व्यक्ति एक, कई तो इसमें 10-15 ग्रुप होंगे जिसमें मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, वो मुरली चिंतन के ग्रुप है मेरे, जो भी भट्टी चलती है अभी ये लखनऊ की भट्टी, तो मैंने एक ग्रुप बना के रखा चिंतन लखनऊ भट्टी, इसमें जो भी मुझे टॉपिक्स है उसका मैं थोड़ा थोड़ा चिंतन डाल देता हूँ जो करना है। तो ये एक हो गया, ये जैसे भट्टी पूरी होगी ग्रुप क्लोज हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कुछ आपको चिंतन ग्रुप्स बनाने हैं, अगर कोई साथ में है तो ठीक, नहीं तो अपने अकेले का। तो जो संगठन बनता है बस एक व्यक्ति चालू होता है, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप जबरदस्ती किसी को नहीं ला सकते कि तुम आ जाओ भाई हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, वो आएगा भाग जाएगा फिर, तो वो प्रश्न हमारा नहीं है। अकेले चालू करो, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, अपने आप जुड़ेंगे। नेक्स्ट,
भाई जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं जब कोचिंग और लाइब्रेरी जैसे जाता हूँ तो वहाँ बहुत वायुमंडल बहुत वैसा, गाली गलौज बहुत ज़्यादा, और जो वो फीमेल वो जो होता है वो बहुत ओवर हो जाता है, और लाइब्रेरी अगर मैं चेंज भी करूँ या कोई भी चेंज भी अगर कुछ करूँ तो वहाँ भी सिमिलर माहौल। बीडी
आप कौन सी लाइब्रेरी में जाते हो? वो ऐसे सेक्शंस वाली
ना? वैसी,
तो वहाँ तो आपका सेक्शन है, आपका ईयर, आपका प्लग है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किताब है, मोबाइल है, इधर उधर जाना ही।
लेकिन भाई जी जैसे कुछ लोगों से संबंध दोस्ती बना कर रखनी पड़ती है ज़रूरत पे जैसे काम आ जाएँ, तो वही जैसे आ जाते हैं तो वो हमसे नहीं लेकिन आपस में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है।
सबसे पहले तो लाइब्रेरी आप जा रहे हो ना, तो ऐसी ऐसी लाइब्रेरी में जाओ जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते, सबसे बेस्ट ऐसी कोई लाइब्रेरी जहाँ यू डू नॉट नो एनीबॉडी, पहली। दूसरा आपको आप यू हैव टू ऑप्शन, एक तो अलोन स्टडी करना है या किसी ग्रुप के साथ किसी व्यक्ति के साथ। सबसे पहला तो खुद ही अकेले स्टडी करना है, अगर पार्टनर चाहिए तो मेल पार्टनर कोई हो, फीमेल्स को तो पार्टनर बनाना ही नहीं है, स्टडी में तो बिल्कुल नहीं बनाना है, पहली बात। अगला आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है वो देखना है आपको, क्योंकि हमने खुद पूरा जीवन लाइब्रेरी में पढ़ाई की है, बहुत सारा समय, पूरा MBBS का लाइब्रेरी, यहाँ तक कि हमारी लाइब्रेरी 10 बजे खुलती थी, हम लोग 6 बजे जाते थे लाइब्रेरी में, वो जो वरांडा होता है ना, 10 बजे तक वहाँ बैठ के पढ़ाई, फिर 10 बजे खुलती थी तब अंदर जाते थे। तो लाइब्रेरी तो सबसे बेस्ट जगह है, पर वही अगर माया बन रही है तो स्टेप नंबर 1 चेंज द लाइब्रेरी, कहीं दूसरी लाइब्रेरी ढूंढो, वहाँ जाओ। और फीमेल्स का क्या कह रहे थे आप? हाँ वही, हाँ वही, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना एक स्ट्रिक्ट रूल सेट करना है कि मैं ब्रेक कब लूँगा और उस ब्रेक में मैं क्या करूँगा। अगर आप कितने बजे जाते हो, 7:45 निकलते हो, 8 बजे से ऐसे पहुँच गए, तो 8 बजे से आपने चालू कर दिया, हाँ तो सुबह 8 से शाम के 8 बजे, तो आप उसमें बीच बीच में ब्रेक लो, तो वो जो ब्रेक लोगे वो जाओ कहीं जूस पी के आके वापस आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो और फिर आ जाओ। उन दोस्तों के बीच में जाना ही नहीं, पूरा साइलेंस, टोटल साइलेंस। इसमें पहले 3-4 दिन बहुत मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि हमसे मिक्स नहीं होता है ये, वो आपने अभी इतनी दोस्ती निभाई ना उनसे, तो कुछ हाँ माइक ले लो, माइक।
मैं कुछ बाहर का लेता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, और इसलिए मुझे और सुनाया जाता है कि तुम कुछ लेते नहीं हो स्टूडेंट लाइफ में हो, और ऊपर से ये कहा जाता है कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, तुम ज्ञान यो मेडिटेशन पता नहीं क्या करते रहते हो।
वो जो भी है वो कोई भी बात है, आपका लक्ष्य क्या है वहाँ पढ़ाई, ये सब आपका टारगेट नहीं है। डिस्कशन करना आस्तिक है कि नास्तिक है, इस ज्ञान में उस ज्ञान में, ये कब मानते हैं नहीं मानते, जस्ट टर्न अ डेफ एयर, इंग्लिश में कहावत है, जस्ट अनसुना कर दो, चिकना घड़ा भव, ये दूसरा वरदान देखने का ही नहीं बिल्कुल क्या करते हैं वो, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप अपना ये सब छोड़ दो और उनके साथ मिल जाओ, फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ भी करो आप, कुछ भी, एनीथिंग यू डू पीपल विल टॉक अगेंस्ट यू, दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। आप सीधा करके जाओ तो लोग कहेंगे देखा आगे देख के चलता है, फिर आप ज़मीन पे देख के चलो बोलते ये तो नीचे देख के चलता है, उसको ऊपर देखना चाहिए, ऊपर देख के चलो तो कहते कभी कभी ज़मीन पे भी देखा करो, ज़मीन पे देखो तो कहते आजू बाजू भी देखना चाहिए, आजू बाजू देखो तो कहते इसकी आंखों का ठिकाना नहीं, आंखें फोड़ दो तो बोलते कर्मों का फल, कुछ भी करो कुछ भी यू डू दे विल टॉक अगेन। तो उसको तो इतना ध्यान देना ही नहीं, आपका टारगेट है एग्जाम पढ़ाई, टोटल उस पर फोकस हो जाओ, चेंज द लाइब्रेरी इफ पॉसिबल, और ये जो है अपना ईयरफोन लगाओ, बीच में आपको ब्रेक मिलता है, ईयरफोन लगा के कहीं पैदल चक्कर लगा के आ जाओ, कोई गार्डन होगा ना वहाँ घूम के वापस आ जाओ, वापस पढ़ाई चालू।
भाई जी मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि अभी जैसे भट्टी करके गए हैं तो एक सप्ताह बहुत अच्छा चलेगा पुरुषार्थ घर पे, इसके बाद फिर धीरे धीरे दिनचर्या ढीली होती है, फिर अमृत वेला भी मिस होने लगता है और वैसे सब,
इसीलिए इसको एंड समझना ही नहीं आपको, ये जस्ट एक ट्रायल जैसा था, यहाँ से बाद जो आज शाम के बाद 5 बजे के बाद रियल भट्टी चालू है, यहाँ तक का तो हो गया पूरा, तो इसमें आपको अपना ही थोड़ी प्लानिंग करनी है, मुझे क्या करना है कैसे करना है, कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे कोर्सेज थोड़ा ज्वाइन करो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले होते हैं, जैसे लैंग्वेजेस सीखना, तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपको बिज़ी रखना है, जैसे पहला ही हमारा पॉइंट था बिज़ी, फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ का प्रभाव न चला जाए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सीरियसली करना पड़ेगा, जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ सेंटर पे जाओ ये वो करो, ये सब नहीं, कुछ इंटरनली करना पड़ेगा अपने, सबसे पहला तो यहाँ से जाने के बाद जो कमरा है ना आपका उसको ठीक करो, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दो, टेबल इधर है इधर कर दो, वो उधर है वो एक फ़ोटो इधर लगाए वहाँ से निकाल के उसको इधर लगा दो, ये एक फर्स्ट स्टेप है कि हम ये करके जा रहे कि अभी चेंज करेंगे इसको, मतलब एक नवीन शुरुआत होने वाली है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट दैट वेज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ न्यू चेंज. सो उसको चेंज कर दो, एक नई दिनचर्या बनाओ. बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो पहले दिन तो नहीं जा सकते थे, तो जिस दिन सुबह सुबह थोड़ा वॉक के लिए चले जाओ, गार्डन में जाके बैठो, वहाँ अपनी किताबें लेके जाओ, गार्डन में पढ़ो. कभी ज़रूरी नहीं कि केवल लाइब्रेरी में ही पढ़ना है. गो टू द गार्डन एंड सिट देयर एंड स्टडी फॉर वन आवर. कुछ तो नया करना है जिससे यहाँ का अभी जो यहाँ जाना उसका प्रभाव चले, नहीं तो जैसे थे हो जाएगा.
जी भाई जी, कुछ दिनों के लिए मैंने जैसे अमृत वेला में सोता था तो मैंने बनाया कि सुबह अमृत वेला नहा धो करके बाबा को भोग लगाना है. उसके लिए मैं कुछ
ड्राई एकदम बहुत ज़्यादा बहुत सारी विधियाँ करना नहीं, वो होगी नहीं ज़्यादा समय.
ड्राई फ्रूट्स ला करके और कुछ दिनों तक भोग लगाया,
ठीक है,
10-11 दिन तो चला,
वो कुछ दिन चलेगा फिर खलास. ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है, ये प्रभाव है कुछ समय का बस. इसलिए ऐसी चीज़ें करो. हमारी जो नई आदतें हैं ना वो अत्यंत सहज होनी चाहिए. जैसे एक्सरसाइज केवल 5 ही मिनट से चालू करना बस, नहीं तो कहेंगे मैं पूरा अभी 1 महीने में पूरा बॉडी बिल्डर ही बनता हूँ. तो पूरा चलोगे रोज मोटिवेशनल वीडियो सुनोगे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे आवाज़ होता है उसमें मोटिवेशनल वीडियोस में, तोड़ दो दुनिया को, दिखा दो तुम कुछ हो. तो ये सब ऐसे सुन के कितना दिन चलेगा, वो 1 ही महीना चलता है बस, उससे ज़्यादा नहीं. आदतें बनाने का रूल नंबर 1 है, इट शुड बी वेरी सिंपल. सिंपल आदत होनी चाहिए नई जो भी करने वाले. आप सीधा इतने बजे उठूंगा उतने बजे नहीं, आराम से केवल उठना है बस, पहला इतना कर लो, थोड़ा जल्दी उठना है. अगर नहीं उठते 6 बजे उठ रहे रोज़, तो टारगेट करो कि कम से कम मुझे 5:30 बजे उठना है. फिर धीरे धीरे टारगेट करो एटलीस्ट 5 बजे उठना है. उठने के बाद योग वगैरह नहीं, कुछ और करो, कुछ और करो, जिम चालू करो घर पे, पुशअप चालू करो, पुलअप चालू करो, कुछ लिखना चालू करो, या घूम के आ जाओ छत पर सुबह सुबह. पहले उठना इंपॉर्टेंट है, योग और वो सब नहीं करना. धीरे 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 माइंड को ट्रेन करना है, धीरे 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 धीरे, तो वो काम होता है. सीधा कहेंगे मैं अभी 2 बजे से बाबा को ज्वालामुखी योग करता हूँ, कितना दिन चलेगा, 10 दिन 12 दिन बस हो गया, फिर खला. हर चीज़ स्लोली स्लोली सहजता से होने, तो ही वो लंबा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी.
भाई जी ओम शांति. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि बाबा कहते हैं आपने जैसे कुमार को भट्टी कराने हैं, अगर मैं ऐसा सिंगल चाइल्ड, अगर मैं बाबा का हाथ पकड़ के अपना जीवन बाबा के हाथों दे दिया और इन द फ्यूचर मैंने जॉब की और माता पिता को सारी जिम्मेवारी पूरी की, फिर एट द एज ऑफ द ओल्ड एज मेरा क्या होगा?
अरे बाप रे, बड़ा लंबी सोच है.
मतलब कहने का समर्पित नहीं होंगे तो ऐसे जॉब करने के साथ फिर
समर्पण का 4 चीज़ों से कोई संबंध नहीं है. पहला बैच, दूसरा कपड़े, तीसरा स्थान और चौथा प्रोग्राम, आयो समर्पण आयोजन. समर्पण का इनसे कोई लेना देना है, समर्पण मन की अवस्था है. समर्पण के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के युग में अभी वो वाली परिभाषा ही नहीं रही है. अब सब डाइल्यूटेड है. दिस इज़ ऑल मनी बिजनेस एवरीवेयर, केवल पैसा पैसा पैसा. आपको क्या लगता है समर्पित होने मतलब बहुत अच्छा है? कुछ नहीं है. हमारे पास रोज़ पेशेंट जो आते यही सब लोग आते, सारा हर एक के पास पता नहीं कितने कितने लाखों लाखों है. कौन सा समर्पण, कैसा समर्पण, किसका समर्पण, वो आप उस परिभाषा में जाना ही नहीं है बिल्कुल. उसमें तो वो तो वहाँ जाओगे तो दुखी होके लौट के आओगे. वहाँ पर ही स्प्लिट है, फ्रैगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़े है. एक डिपार्टमेंट का ना मिले दूसरे डिपार्टमेंट से, सब विभाजित है. इसलिए ये भूल ही जाओ उस टाइप का. और दूसरी बात, ये इतनी लंबी जो सोच है इसकी आवश्यकता नहीं. ये वैसे ही है जैसे 2 व्यक्ति ट्रेन में जा रहे हैं, एक बूढ़ा है एक जवान है. वो जवान बूढ़े से पूछता है, अंकल टाइम क्या हुआ? अंकल जी कहते मैं नहीं बताऊंगा. बोलते अरे कमाल है, मैं पूछ रहा हूँ टाइम खाली बता दो कितना है. वो कहते मैं बताना ही नहीं है मुझे, उस बोगी में 2 ही लोग हैं. बोलते खाली टाइम? बोलते नहीं बताऊंगा. बोलते क्यों? तो बोले देखो अभी तुम पूछोगे टाइम क्या है, फिर मैं टाइम बताऊंगा, फिर तुम पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, फिर मैं कहूँगा मैं वहाँ जा रहा हूँ लखनऊ, तुम कहोगे मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ, फिर पूछेंगे तुम कहाँ रहते हो, तो मैं कहूँगा यहाँ रहता हूँ, तो फिर कहूँगे हम कभी मिलेंगे बिजनेस के सिलसिले में, मैं आपके घर आ जाऊँगा और मेरी एक जवान बेटी है, फिर तुम उस बेटी को देखोगे और हो सकता है तुम दोनों का प्यार हो जाए और हो सकता है तुम दोनों शादी करना चाहो और मैं अपने बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करूंगा जिसके पास घड़ी तक नहीं है। ये है सोच, लंबी दूर की सोच, इसलिए इतना अभी सोचना नहीं है आपको कि सिंगल चाइल्ड और ये सब जो है ना, आपको केवल अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करो। कुमारों का सबसे बड़ी प्राप्ति जो है वो ये है जो याद रखनी है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, किसी से पैसों की भीख नहीं मांगना है और भोजन की भीख नहीं मांगना, ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। सेंटर वाले मुझे थोड़ा भोजन दे दो, दीदी मुझे थोड़ा, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे थोड़ा भोजन की व्यवस्था कर दो मेरी, वो आज करेंगे कल नहीं करेंगे तो दुख होगा, फिर आज दिया जाएगा कल नहीं देंगे। ऐसे हमने कितने सारे कुमार और कितने सारे भाई बहनों को देखा है कि जिन्होंने सेंटर के अपना सारा पैसा दे दिया, अभी वो बहन उसको चाय तक नहीं पूछती, आउट कर दिया है, पूरा किक मार के बाहर कर दिया, वो पछताते हैं क्यों दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने पैरों पे खड़े रहो, अपना पढ़ाई करो, अपनी जॉब करो, सेंटर पर आपको जो कुछ मिलता है आपको देना है भले दे दो, यज्ञ में दे दो, सेंटर पे दे दो, जहाँ देना है जितनी सेवा करनी है दे दो, छुट्टी नहीं बीच में, और अपने आप को जॉब में इतना बिजी नहीं करना है कि बिल्कुल टाइम ही ना मिले। जॉब कम से कम बस 6 से 8 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। टू मच ट्रैवलिंग, ये भी करूँ वो भी करूँ ऐसा भी करूँ वैसा भी करूँ, दिस इज़ अ ट्रैप। और अभी तो समय बहुत कम है, इसलिए माँ बाप का क्या होगा वो तो बिल्कुल भी मत सोचो, उनका जो होगा वो होगा, भगवान देख रहे हैं, आपसे पहले दुनिया में आए हैं तो उनको अकल हमसे ज़्यादा है क्या करना है कैसे करना है। और उनकी,
और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब किसी अगर अपोजिट एंटर को देखते हैं तो अंदर से अलग टाइप
करंट लगता होगा ना, हाँ तो फिर
तो इस चीज को मतलब कैसे कंट्रोल करें?
कंट्रोल करने का कुछ इसमें है ही नहीं, मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी नेचुरल, उसमें आकर्षण होता है, फीमेल्स को भी होता है मेल्स को भी होता है, सबको आकर्षण होता है। ये सारा जो ज्ञान है ये इसी को समझने के लिए है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ये किस तरह से सेक्सुअल अट्रैक्शन स्टार्ट्स एंड हाउ इट वर्क्स। ये खेल उस फीमेल का है ही नहीं एक्चुअली, ये जो खेल है ना डोपामिन का है, और डोपामिन रिलीज होता है। सो इस संसार में अगर देखो तो सेक्स एंड मास्टरबेशन, दीज आर द टू थिंग्स जिसमें डोपामिन रिलीज होता है, बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज होता है, इसलिए 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी दे आर एडिक्टेड टू मास्टरबेशन, कि जिसमें बॉडी से सीमेन बाहर निकलता है और जैसे ही सीमेन बाहर निकलता है वीर्य तन बदन में खुशी का अनुभव होता है। क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं कुछ, आनंदामाइड नाम के ऐसे कुछ सारे, वो सब एक साथ रिलीज होते हैं इसलिए। पर वो वैसा है, वो जो खुशी है, जैसे ठंड लग रही है बहुत, तो आप क्या करोगे, ये जो फर्नीचर है ना इसको जला के आग लोगे, तो इतना खर्चा है, खुशी तो मिली पर इतना बड़ा खर्चा करके, ये वही है। ठंड लग रही है तो मैंने पूरे फर्नीचर सारे जला दिए और सेक रहे अपने आप को, हाँ हाँ अभी ठीक लग रहा है, अरे पर खर्चा कितना ये कर दिया तुमने। तो वो जो सुख है ना उसमें एक है, इमिडिएटली आफ्टर ऑल द दीज प्रोसेसेस पर्सन को थकान हो जाती है, इसलिए नींद आ जाती है, थकान होती है, गिल्ट होता है, अगर वो कोई अध्यात्म संस्था से जुड़ा है तो गिल्ट और थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बाहर वाले लोगों को इतना नहीं होता, इधर वाले लोगों को ज़्यादा होगा, वो गिल्ट होगा। और उसको आप जोड़ेंगे उस स्त्री के शरीर के साथ, बट उस स्त्री के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ सेक्स इज अ मेंटल डिसीज, इट्स अ मेंटल इमेजिनेशन, इल्यूजन है वो, एक इल्यूजन, एक भ्रम उत्पन्न होता है कि उसमें सौंदर्य, एक्चुअली उसमें सौंदर्य है ही नहीं। पहली बात, उसको आप देखो, पेशेंट्स को देखो, ये हमारी जो भावना है उसमें प्रॉब्लम है, हम उसको एक वस्तु के रूप में देख रहे हैं, एक दूसरा हम उसको एक क्या कहेंगे, एक भोग वस्तु के रूप में देख रहे हैं, दूसरा तीसरा हम उसको अपना प्रेमी समझ रहे हैं। अगर आप किसी को प्रिय सी, मेरे प्रिय, प्रियतमा, ये सब बातें कहोगे तो उससे ये सब होगा आकर्षण और ज़्यादा होगा। और रही अनरिलेटेड फीमेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उनका भी एक ऐसा होता है कि लोग हमें देखें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, उनका अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो आपको सबसे पहले जो एक अभ्यास इस भट्टी में बताया, डाउन कास्ट आइज, नज़र नीचे, एक दूसरा, ये टेम्पटेशंस में ज़्यादा जाना ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको दिखता भी है तो उसके आर पार देखो, क्या है इसके भीतर, उसका चिंतन करो, उसके बारे में पढ़ो, डेली ब्रह्मचर्य का लिटरेचर थोड़ा स्टडी करो, तो वो आकर्षण धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। और जो करंट और ये सब जो बात कर रहे हैं ना, ये भ्रम है सारे करंट, बाद में बड़े बड़े करंट लगते हैं, फिर ऐसे करंट लगते हैं कि बात मत पूछो। आपको क्या लगा वो सूख इतना सस्ता है, वो पूरा उसको चुकतु करती है। पत्नी आती है फर्स्ट मई, वो कहता है अच्छा आज हमारे शादी का सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, वो कहती है नहीं, हैप्पी लेबर्स डे। तो उससे थोड़ा दूर ही रहना है, ठीक है। अगर ये सारी दोस्ती और ये सारा जो ये मूवीज़ ने बहुत गड़बड़ की है, ये जितनी मूवीज़ आई है ना, उन्होंने ये सब दिखाया है, प्यार मोहब्बत इश्क, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनके अपने जीवन में देखो क्या चल रहा है, जितने बॉलीवुड स्टार्स है उनकी सबकी डिवोर्स मैरिजेस फ्रस्ट्रेशन, चार चार शादियाँ करके भी पता नहीं क्या चल रहा है, पहली पत्नी से भी अभी भी कॉन्टैक्ट में है, दूसरी भी चल रही है, तीसरी भी चल रही है, फ्रस्ट्रेशन, कोर्ट केसेस चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, जो पर्दे पे दिखाते हैं वो कुछ और ही है, वो तो राइटर की लिखी हुई स्टोरी होती है। और उनका होता है कि पैसा कमाना है ना, उसका बिजनेस होता है, वो बहुत ही कम होते हैं कि जो रियल होता है उसमें। तो वो ही हमको दिखाया गया है, और हमारे जो व्यूज़ बने हैं सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के, दे आर बेस्ड ऑन दिस बॉलीवुड मूवीज़ एंड ट्रेलर्स एंड मूवीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज़ एंड एपिसोड सीरियल्स, ये सारा हरा कचरा है उसमें। और वही कॉन्सेप्ट हमारे अंदर घुस गया है कि दोस्ती होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इज ऑल बोगस। नेक्स्ट,
ओम शांति भाई साहब, हमारे नीचे एक जूनियर है 140 किलो का है, 5 साल से कुछ काम नहीं करता है, उसका सारा काम मुझे करना पड़ता है, उसके लिए कभी कभी ऑफिस में मैं 1-1.5 घंटे ज़्यादा रुकता हूँ, पूरा मैं उसमें लीन हो गया हूँ ऑफिस में। तो मैं
ऑफिशियल क्या कहते हैं आपके बॉस सीनियर,
बॉस को मैंने सबको कंप्लेन कर दी, मैं कहा ये पूरे दिन सोता है ऑफिस में बैठ के।
गवर्नमेंट ऑफिस क्या है,
गवर्नमेंट है, और जलेबी खाएगा पकौड़ी खाएगा काम
तो
नहीं करेगा।
वो क्या करता है, वो काम करता है, आपको यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट कि मेरा काम यहाँ से यहाँ तक है, इसके आगे मैं नहीं करूँगा। वो तुम्हारी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है ऑफिस का काम करना, आपका अपना काम करना है, बाकी वो जो नहीं करता है यू हैव टू गिव अ लेटर कि फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू डू, यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा, बाकी मेरा कुछ काम नहीं है। आपको दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉय करना है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करो इसको निकालो दूसरे को लगाओ, वो आपका काम नहीं है। बट आप अगर करते जाओगे तो यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, अच्छा ये है ना ये कर ही लेगा, वो ऐसे मान लेंगे फिर।
और भाई जी एक वो जैसे करप्शन के केस है, अब हमारे हम तो खाते नहीं हैं, हमारे ऊपर वाले पैसा खाते हैं और प्रेशराइज करते हैं गरम गलत काम करो, गलत नोट बना दो, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दो, उससे हमारे मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर भी पैसा खा रहे हैं।
इसीलिए धीरे धीरे आपको अगले 6 मास या 1 साल एक ब्रिज बनाना है कि ये प्रोफेशन से किसी और प्रोफेशन पे स्विच होना है, और वो एक अचानक नहीं होगा, एक पुल बनाना पड़ेगा, उधर से इधर स्विच करना है। तो कैसे, कौन सा नया प्रोफेशन हो जिसमें आप बॉस होंगे, जिसमें आप इंचार्ज होंगे, जहाँ डिसीजंस आप लोगे, अभी आप दूसरों के अंडर हो तो वो डिसीजंस लेते, तो वो जो कुछ करेंगे आप भी उसके भागी बन रहे हो उसमें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कोई दारू बेचता है और मैं तो बाबा को सुबह याद करता हूँ, दिन में दारू बेचता हूँ, बाबा की याद में बाबा की याद में बीड़ी बेचता हूँ, वो भी मैं तो ये मेरा काम है, मैं अना सकता हूँ, मैं कर्मयोगी बिल्कुल, किसको मैं बराबर उसमें कोई गमन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करता हूँ, बराबर दारू हरेक को जिसको चाहिए, गरीब हो कोई भेदभाव नहीं करता, सबको देता हूँ मैं। अगर कोई बेचारा आ जाए नशेड़ी आ जाए और उसके पास पैसा नहीं तो मैं उसको फ्री भी देता हूँ। तो आप बताओ मेरे पाप है कि पुण्य है, ये वही है फिर कि अगर वो कर रहे हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर जी की कविता है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। वो शिकारी केवल पाप का भागी नहीं है जो अत्याचार कर रहा है, जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, जो आतंकवादी है, जो आक्रांता है, वो केवल पाप का भागी नहीं है। जो तटस्थ खड़े हैं, जो चुपचाप देख रहे पाप को होते हुए, समय लिखेगा उनके भी अपराध।
अब उसमें जैसे 3 करोड़ रुपए दिए उसको उन्होंने, अब डायरेक्टर पावर है वो दिल्ली में बैठा, अब मुझे उठा के फिर साउथ में कोने में फेंक देगा।
वही मैं कह रहा हूँ, आपको जीवन का एक बड़ा निर्णय लेना, इसलिए मैंने कहा एक पुल बनाना पड़ेगा उधर से इधर। ऐसा ये सब को छोड़कर ऐसा आप क्या चालू कर सकते हो जीरो से कुछ और, ये पूरा छोड़कर, क्योंकि इसमें आप रिटायरमेंट, इसमें रिजाइन करके, पर एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि आप उस सिस्टम को नहीं ठीक कर सकते। वो सिस्टम इटसेल्फ इज करप्ट, किस किस को ठीक करोगे? और वो जो जो करेंगे उसके, आप उसके अंदर इंक्लूडेड है। आपकी स्थिति फिर वो भीष्म पितामह जैसी है या फिर वो गुरु द्रोणाचार्य जैसी है, उनका कोई पाप था क्या? पाप एक ही था, वो किसके पक्ष में थे, किसका खाया था उसने, उन्होंने नमक दो, तो ये वैसा ही है। तो धीरे धीरे एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा कि और क्या किया जा सकता
है। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, मेरा ट्रांसफर होगा बस।
ट्रांसफर जहाँ होगा वहाँ पर भी यही होंगे सारे,
फिर ट्रांसफर होगा
फिर। हाँ, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक आईएएस ऑफिसर है, वो हर 3 से 4 महीने में ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या नाम है उनका, मुंडे ऐसे कुछ नाम है, वो हर 3-4 महीने में उसकी ट्रांसफर हो, एकदम ऑनेस्ट है, सिंसियर है, उसको टिकने नहीं देते, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, घूमते रहो फिर। हाँ, वो मुझे पूरी डिटेल पता नहीं, पर उनकी ट्रांसफर करते रहते हैं सरकारी, तो वो एक है, जाओ सब जगह घूमो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल आपको थोड़ा डिसीजन लेना है कि कुछ और कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट,
थैंक यू। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मतलब मैं माता पिता का अकेला बेटा हूँ तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है। जॉब तो करते हैं बट कभी कभी मन में आता है कि घर छोड़ के सेंटर पे समर्पित हो जाऊँ। कभी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हट जाऊँगा, क्योंकि वो भी उम्मीद हमी से लगाए बैठे हैं। पहले तो वो शादी करना चाहते, शादी वाला तो वो समझ गए हैं क्योंकि फैमिली ज्ञान में चलती है, मम्मी भी ज्ञान में, पिता भी ज्ञान में और बहनें भी ज्ञान में हैं। तो क्या करना चाहिए?
सबसे पहले आप अभी जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो। ये जो सरेंडर और ये सब जो है ना, इसमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये मत समझो कि वो सब करने के बाद आपका पुरुषार्थ बहुत तेज़ हो जाएगा। ऐसा कोई ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो, सबसे पहले इंडिपेंडेंट रहना है, दूसरा पैसों के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी है, भोजन के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी है, तीसरा धीरे 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 अपने ज्ञान योग में ही बहुत आगे निकल जाना है, खुद अकेले इंडिपेंडेंट, और धीरे धीरे घर से थोड़ा दूर जाके देखो। अभी घर में रहते हैं ना, हाँ, तो कुछ दिन के लिए बाहर जाओ, हो सके तो विदेश जाके आ जाओ, 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ्स, या भारत में कहीं और जाओ और वहाँ एक इंडिपेंडेंट बसे रहा, वहाँ इंडिपेंडेंट सब कुछ चालू करके देखो, जहाँ आपका कोई भी आधार नहीं है, सहारा नहीं है, बस स्टेशन से उतरो, वहाँ से चालू होगी, रहना कहाँ है, वो ठोकरें थोड़ी खाओ जाके, तो वो सब ठोकरें सब खाएंगे ना, तो कुछ आपको एक अलग बल मिलेगा घर वालों से दूर रहकर। निराधार भव, ये तीसरा वरदान है कुमार अर्थात निराधार, किसी का आधार नहीं चाहिए, ना सेंटर वालों का, ना ब्रह्मा कुमारियों का, ना मधुबन वालों का, किसी का भी, ना लौकिक वालों का किसी का, ना डिपार्टमेंट वालों का, गेट लॉस्ट, कोई नहीं चाहिए तुम में से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। दूसरा दूसरे को दे दो, और जिनका हो गया है वो नहीं, जिनका हो गया है वो नहीं, आपका हो गया हो गया, नहीं नहीं दूसरा दूसरा दूसरा, हम आएंगे आपके पर, सबके हो जाए उसके बाद में फिर आप जो रिपीट है वो रिपीटर्स, कुछ भी जल्दी जल्दी।
भाई साहब, आपकी क्लास सुनकर एक अलग सा वैराग्य उत्पन्न होता है, ये ट्रुथ है, मेरा ही नहीं है, बहुतों का है। दूसरी तरफ बाबा मुरलियों में कहते हैं कि हमें संस्कार मिलन भी करना है, संस्कार मिलाकर भी चलना है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
जी, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। संस्कार मिलन कर चलना है अर्थात ये नहीं कि आप लोगों के साथ घूम रहे, हंस रहे, घूम रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। व्हाट संस्कार मिलन? संस्कार मिलन की बहुत बड़ी परिभाषा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एस्पेक्ट, उसके 10 अगर एस्पेक्ट्स है तो वो एक है। संस्कार मिलन अर्थात आप 4 लोगों के बीच है, 10 लोगों के बीच है, तो आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, वो संस्कार मिलन है। एक दूसरा, अगर उनके साथ रहना पड़े,
नहीं लाइक जैसे सेंटर पे रह रहे हैं,
हाँ, तो सेंटर पे तो, रह रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो करनी होगी। बाबा ने इसलिए कहा है सिक सिक झुक झुक मरमर, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा और उसमें से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो वहाँ आपको, पर आपका जो अपना जो मेन स्वभाव है और जो वैराग है उसको तो प्रिजर्व करके रखना है। दैट शुड नॉट गेट डाइल्यूटेड बाई इंटेलिजेंस इन वॉट दे आर डूइंग। वो अगर कहते हैं चलो आज ये करते वो करते, तो आप यू कैन क्वाइटली डिनाई, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट ग्रेजुअली। आपको ग्रेजुअली बहुत सारी, जैसे वो जस्टिस अय्यर आते थे, जस्टिस अय्यर कस्टोडियन ऑफ लॉ कहा जाता था उनको, भारत में 84 से ज़्यादा किताबें लिखी है लॉ पर। वो मधुबन में आए थे, इंद्रप्रस्थ में रुके थे, तो कल्चरल प्रोग्राम्स में वो कहते थे, आए तो जगदीश भाई ने बोला अपने अनुभव में, कल्चरल प्रोग्राम चालू हो रहा है ओम शांति भवन में, तो उन्होंने कहा मुझे माफ़ करना, मैं ये कल्चरल प्रोग्राम नहीं अटेंड करना कर सकता क्योंकि मुझे सुबह 2 बजे उठना पड़ता है और लॉ की किताबें लिखनी पड़ती है। तो वी रिस्पेक्टेड, जो लोग पगड़ी पहनते हैं सिख लोग, हम क्या हंसते उन पर? नहीं, वी रिस्पेक्ट। अगर आप सीरियस है अपने इसमें तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यूअर डाइट या लाइफ स्टाइल या नेचर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। पर हाँ, आप कहेंगे आप ही अपने सिद्धांतों पर ठीक नहीं है, पूरा अटल नहीं है, तो फिर आप उनके साथ कभी जाओगे और जाने के बाद फिर एकदम वैराग आएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अगली बार कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं आता तुम्हारे साथ, फिर वो कहेंगे देखा, नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ बात उसकी नहीं है, तो आप कहेंगे देखा मेरा तो संस्कार मिलन का रास नहीं हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर इन यूर पर्सपेक्टिव एंड यूर व्यू पॉइंट्स। इफ़ यू आर वेरी फर्म, जो लोग आज विरोध करते हैं ना, जैसे लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया ना, अगर ऑफिस में आप काम करते हो और उन लोगों को पता है ये ब्रह्मा कुमारी, तो वो भोजन पे बुलाते हैं तो आपके लिए अलग से देते हैं, उनको पता चल गया है कि ये लोग बाहर का नहीं खाते, तो दे रिस्पेक्ट। पर आपने अगर खा लिया एक दिन, ठीक है कौन देखता है, आज थोड़ा खा लेता हूँ, फिर अगली बार आपको याद आया नहीं नहीं मुझे बाहर का नहीं खाना है, तो आप कहेंगे नहीं 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 मैं नहीं आता, तब वो ताने देंगे फिर। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे एक परिवार बाहर गया भोजन के लिए, तो थाली में समोसा आ गया, अभी अभी ज्ञान में आया था परिवार, तो उन्होंने क्या किया, समोसा को तोड़ा, अंदर के आलू खाने लगे। हम बाहर का नहीं खाते, ये जो समोसे का बाहर का है ना हम बाहर का नहीं खाते, किधर का खाते हैं, अंदर का। तो ये भी इंटरप्रिटेशन है, तो ये उन्होंने देखा तो लोग थोड़ी ना मानेंगे, बट यू आर एक्सट्रीमली फर्म, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। नेक्स्ट, इधर से माइक है इधर।
ओम शांति भाई जी।
हाँ
जी, मैं सामने हूँ। ये पूछना था कि जैसे मैं घर में जैसे मदर फादर थे, तो मैंने उन अपनी मतलब जिम्मेदारी पूरी कर दी, माना कि वो बाबा के पास चले गए यहाँ, मतलब सिंगल ही हूँ ओवरऑल। तो अभी जैसे फ़िलहाल मैं वर्किंग हूँ, पर जैसे सेंटर्स में दीदी लोग कहते हैं कि अब आपको जो है कि जॉब वगैरह मतलब ना करके सेंटर पर रहना चाहिए, चूँकि ओवरऑल मतलब उनका ये है कि, अच्छा हमें ये भी लगता है कि हाँ वास्तव में क्योंकि कुमार लोग ही जो है फील्ड की सेवाएं या फिर जैसे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि सिर्फ बहनें ही नहीं कर सकती सब चीज़ें, तो उस आधार से मना बड़ा मतलब दिमाग में चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अभी तक मतलब जो एक मन में जो जिम्मेदारी थी कि वो हमारे मतलब लौकिक मदर फादर हैं, सामाजिक नाते से मतलब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनकी हमें मतलब सेवा करना चाहिए, तो उधर से तो मतलब मैं मुक्त हो चुका हूँ, अब आगे क्या स्टेप करना चाहिए
वो? See, हर चीज़ के लिए ना देर इज समथिंग कॉल्ड एज द डिवाइन कॉल, एक कॉल आना चाहिए, ये हायर डिसीजंस है लाइफ के, आप ये किसी को पूछ के नहीं कर सकते, ये आई कैन नॉट टेल दिस, ये आपका डिसीजन रहेगा, आपके आपको आवाज़ आएगी वो कि हो गया अभी उधर का सब कुछ, अभी मुझे ये करना है, और तब जब ये एक इच्छा जब आएगी, जो कॉल आएगा जब, तब आप किसी को भी नहीं पूछोगे, यहाँ तक कि बहनों को भी नहीं पूछोगे, मुझे नहीं पूछोगे, किसी को ही नहीं पूछोगे, यू विल जस्ट डू इट विदाउट आस्किंग, किसी को भी नहीं पूछेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप तर्क वितर्क नहीं करोगे कि ये करने से ये फ़ायदा होगा, बहनों को फ़ायदा होगा, अच्छा आप अंदर चले गए और सेवा कर रहे हो और वहाँ डिस्टर्ब हो गए तो फिर कहेंगे अरे मेरा तो डिसीजन गलत हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट दिस, इट इज़ अबाउट अल्टीमेट सरेंडर। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है. तो इट इज़ लाइक दैट व्हेन द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, उसमें आप किसी को नहीं पूछोगे, एक कॉल आएगा भीतर से. अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट करो, उस कॉल को आने दो. आपको कौन सा परवाना बनना है, उसमें फिदा होने वाला या सेल्फी लेके क्षमा के साथ सेल्फी लेके जाने वाला? दो प्रकार के पर्व है, एक सेल्फी परवाना और एक सरेंडर वाला परवाना. सो ये हायर डिसीजंस है, मेजर डिसीजंस है लाइफ के. एक बार कॉल आ गया, वो आपको इतना क्लियर इतना स्पष्ट दिखेगा, इसके लिए एटलीस्ट 3 अमृत वेला 2 से 5 बैठो, उत्तर आएगा कुछ तो कुछ. या और भी थोड़ा वेट करो, एकांत में जाओ, कहीं कहीं होटल में रुको, कहीं दूर जाकर 3 दिन मौन में रहो, किसी आश्रम में रुको, बाहर की संस्थाओं में, नॉन ब्रह्मा कुमारीज. यहाँ जाओगे तो कहेंगे यहाँ क्यों आई है, क्यों कहाँ से आए, कौन से सेंटर से आए, क्या करना है, थोड़ा एक क्लास ही करा दो, अपना अनुभव ही सुना दो, हो गया. ये सब होगा, क्यों आए, कुछ तो गड़बड़ दिख रही है. अच्छा वहाँ क्यों नहीं, वहाँ, अच्छा वहाँ सरेंडर, हमारे पास क्यों नहीं सरेंडर हो जाओ. मधुबन वाला आएगा, बोलेंगे मुझे सेवादारी की जरूरत है, चलो मेरे साथ मधुबन, वो उधर आपको उधर लेके चला जाएगा. तो ये एब्सोल्युटली अननोन अज्ञात स्थान पर जाकर एक हफ्ता बिताओ, किसी नेचर की ओर सेंटर पे चले जाओ, ये सबसे बेस्ट है. नेचर की ओर रेसिडेंशियल होते हैं ना जहाँ पर, वहाँ चले जाओ 7 दिन के लिए, उस एकांत में मौन में टाइम बहुत मिलता है, चिंतन करो तो अपने आप उत्तर आएगा. नेक्स्ट एनीथिंग. हाँ इधर.
ओम शांति. मेरे पापा जो हैं वो मतलब उनका व्यापार है, तो उनका व्यापार में काफ़ी लॉस हुआ, तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ बेच भी दिया पर अभी तक लॉस ख़त्म नहीं हुआ. बिजनेस अभी भी चल रहे हैं, उसको अभी मैं संभाल रहा हूँ, पर लॉस ख़त्म भी हो रहा है, पर उसको मतलब ख़त्म करते करते मैं परेशान हो जाता हूँ, काफ़ी गुस्सा और तेज़ आवाज़ ऐसा हो जाता है.
देखो ये जो मनी मैटर्स होते हैं ना, ये एक बहुत, और एक हमारा एक कुमार है, एकदम अनन्य कुमार, बाबा का एकदम अनन्य कुमार, बाहर रहता है, टीचर है. अब उसके भाई ने कुछ शेयर मार्केट ये सब पैसे लगाए और इससे पैसे मांगे, तो पैसे देता गया देता गया. अभी उसके ऊपर 4 करोड़ का लोन है, उसमें हर मास 4 लाख उसे तैयार रखने पड़ते हैं देने के लिए. और एक तरफ तीव्र पुरुषार्थ, मुरलियों का अध्ययन स्टडी सब कुछ, पर वो है. और उसका भाई तो उससे भी गई गुजरे हालत में, उससे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इसने तो गलती कर दी. तो ये इस तरह के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं और जिसमें लॉसेस हो गया है, हाई लॉसेस हो गया है, धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड की तरफ जाता है, ये सब होता है. इसमें आपको बहुत आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए. एक कुछ सीए होते हैं ना, उन सीए से राय लेनी चाहिए क्या क्या किया जा सकता है इसमें. दूसरा, पैसे के दूसरे सोर्सेज जनरेट करने हैं, कुछ अच्छे और सोर्सेज जनरेट कर सके. और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह सुबह अमृत वेला सब कुछ बाबा को समर्पित कर दो कि ये है, अब इसका क्या किया जाए. ये जो हो रहा है कोई अचानक नहीं हो रहा है, किसी जन्म का बड़ा गहरा हिसाब है, वेरी डीप.
उसकी वजह से मैं ना ज्ञान कर पाता हूँ,
ना ज्ञान कर पाते, वही है. पर जितना एटलीस्ट सुबह उठ के बाबा को बस समर्पित कर दो और सो जाओ वापस, कुछ तो करो, कुछ को करो, तो ज्ञान बिन तो सुनो ना, मुरली बिल्ली हटाओ सब,
कभी कदार
क्लास कोई ले लो, सुनो, जिम में जाओ और जिम करते करते क्लास सुन लो, बस इतना ही करो. जीरो से कुछ तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि जाके बिल्कुल एक साथ 100% ही सब करेंगे, ऐसा नहीं होगा. थोड़ा थोड़ा ही हम कर सकते, कई बार सब नहीं कर सकते. हम भी कितना 5 साल बाहर रहे, 5 साल बहुत स्ट्रगल रहा, एकदम भयंकर स्ट्रगल. मैं जब मुंबई पहुंचा तो वो डॉक्टर के पास, जिनका नंबर मुझे निर्वेर भाई साहब ने दिया था, तो वो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब तुम आए हो सीखने के लिए, तुम नहीं डिसाइड करोगे. भिखारी ये डिसाइड नहीं करता है कि क्या मुझे ये ड्यूटी मिलेगी वो ड्यूटी मिले. ये झटका पहले वहाँ मिला एक, फिर जब BSES में गए तो भी रहने के लिए कमरा दिया गया, उस कमरे में पूरी दारू की बोतलें, दो डॉक्टर ऑलरेडी रहते थे, इतना कचरा, वो सारी मैगजीन्स। पहले तो हमने सोचा हमको रहना ही नहीं है, निकलना है यहाँ से, वापस मधुबन चले जाएँ, पर हम रहे। फिर संघर्ष, हर दिन का एक नया संघर्ष, ड्यूटी पूरी इतना 8 घंटा, और उसमें भी हम 18-18 घंटे जॉब करते थे। एक ही लक्ष्य था कि मुझे सीख कर वापस मधुबन जाना है, तो ऐसा कुछ ना रहे कि जो मैं नहीं सीखा हूँ। वो एक ड्यूटी नाइट ड्यूटी एक हॉस्पिटल में, वो नाइट ड्यूटी करके आके दूसरे हॉस्पिटल में मॉर्निंग ड्यूटी, और वो करके दो लोकल ट्रेन बदल के एक दूसरी जगह जाता था जहाँ पर एको सीखना होता है, 2D एको हार्ट का। तो ये ऐसी ड्यूटीज़ रहती थी, तीन तीन जगह पर ड्यूटीज़। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट स्ट्रगल, पर एक लक्ष्य था कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, हायर पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, इससे संसार का कल्याण होगा। तो आप भी, ये सारा जो हुआ है, पहले तो ये किसी और जन्म का है या इस जन्म का भी होगा, हमने कुछ गलती किया, थोड़ा थोड़ा बाबा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करना है। और इसके रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ ऑडियोज़ होंगे इनके, उसको देखो, AI में डालो सारा, ये सारा आपने जो मुझे बताया ना, सब कुछ AI को बताओ। तो AI को बोलो गिव 20 सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम, वो अपने आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब देगा, उसका उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट
भाई जी, भोजन आप बहुत फोकस करते हैं, तो एक योगी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
फलाहार।
तो तीन टाइम भोजन कैसे? तीन टाइम
फलाहार, तीनों टाइम नहीं होता है फलाहार। फलाहार 7 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स होता है, फलाहार का कोई टाइम नहीं होता है। जब जब भूख लगी तब तक खाना होता है, और भूख ज़्यादा लगती है। आपने रोटी खा ली तो आपको 3-4 घंटे भूख नहीं लगती, पर आपने मैंगो खा लिया, एप्पल खा लिया, तो 2 घंटे के बाद भूख लगती है। तो ये एक दिन की यात्रा नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है, और ये कोई भोजन की यात्रा ही नहीं है। सबसे पहली अगर आप फूड पे फोकस रहेंगे तो दमन होगा, सप्रेशन होगा, अरे मुझे भूख लगी है अभी क्या करूँ, ये कहते फल का रोते हुए, इधर पानी पूरी बनी और हम फल, अरे 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 प्रभु ऐसा अत्याचार, इधर पाव भाजी बनी हुई और हम ये खाएं, कभी सूखे अंकुरित, अरे 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 पता नहीं कि क्यों बने थे इधर, क्यों आए थे, ये ऐसे दुखी हो जाएंगे। फिर पहले स्टडी, उसके बारे में पढ़ाई करो थोड़ा, उसके बारे में वीडियोस देखो। एक चैनल है यूट्यूब पे, ईट फ्रूट एंड हील, बाहर वालों का है, पर उसमें ढेर सारे वीडियोस है, हज़ारों, हर दिन पूरा दिन भर ऑनलाइन चलते रहता है, जूम पर और ऑनलाइन यूट्यूब पर आता है, उसके थोड़े वीडियोज़ देखो। एक NDS करके है, सात्विक मूवमेंट इज़ वेरी वेरी बेसिक, KG1, KG2, उसके यू हैव टू गो हायर एंड हायर एंड हायर। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे संस्था है, NLS, बहुत सारे, एक NK शर्मा जी है।
सुबह का भोजन भारी
नहीं, वो सब कॉन्सेप्ट आप कुछ पूछो ही मत, ये सबका उत्तर एक ही है, इस सबका उत्तर एक है, आप कौन हो आइडियल। आपने वो योगी का पूछा इसलिए मैंने बताया, बाकी वैसा भी नहीं है कि केवल फल खाने वाले बहुत अच्छे हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे फल खाते खाली, पर क्रोध बहुत है, ब्रह्मचर्य, ये हर एक अपना 10 चीज़ें चाहिए पुरुषार्थ में, उसमें से एक भोजन है। आपने केवल भोजन को पकड़ा और ये सब छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है, उसमें भी अहंकार आएगा, हम तो फल खाते हैं, तुम वो खाते हो, भोगी कहीं के जाओ यहाँ से तो इसमें अहंकार भी आता है। वो आप सब चीज़ें चाहिए, अमृत वेला भी चाहिए। तो वो बोर्ड कहाँ रखा है, चला गया क्या? चलो ठीक है, जाने दो। अगर राजयोग बीच में है तो 15-20 चीज़ें चाहिए, तब राजयोग बनता है। उसमें एक भोजन है केवल, केवल एक, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए। अभी कई लोग फलाहारी है, बट वो ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट है, ब्रह्मा कुमारी इसके अगेंस्ट है, ऐसे भी लोग हैं, वो खाली फूड पर ही उनका जीवन ही केवल फूड। अरे फूड जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है आत्मा समझ, बाप को याद कर, वो नहीं, वो छूट गया, कोई उसी में लगे है, कोई किसी में लगे है, कोई किस में, कोई केवल सेवा में लगा हुआ है, केवल केवल कोई मुरली में ही लगा हुआ है, केवल मुरली ही पढ़ते रहते, बस योग वग कुछ नहीं। यू नीड एवरीथिंग टुगेदर। नेक्स्ट आपका हो गया, रुको, दूसरा दूसरा फटाफट फटाफट माइक दे दो
भाई जी। यहाँ हम लोग जैसे सीखते हैं, मैंपन को समाप्त करना है, फॉर एग्जांपल मैं का इस्तेमाल आत्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब जैसे बिजनेस करते हैं, उसमें जो भी गोल बनाते हैं या टारगेट्स बनाते हैं तो उसमें हमेशा ये लिखते हैं ना कि मैं इस महीने इतना टारगेट अचीव
कर लूंगा। दैट इज आल्सो राइट। ये दोनों अलग चीज़ें हैं
जी।
एक होता है ना पुरुषार्थ, और आपका जैसे बिजनेस है, जॉब है, उसमें आपको एक टारगेट अचीव करना है, गोल अचीव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैराथन में आप भाग ले रहे हो तो आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं करूँगा, बाबा मुझे मैराथन में जिताएगा, मैं किरने ले रहा हूँ, ये सब मैं नहीं करूँगा, दौड़ना ये सब। अरे आपको इच्छा क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट आना है। हाँ तो पर वो जो मैं है वो अलग प्रकार का मैं है। आप बिना मैं के एम्बिशंस, डिजायर्स, गोल्स, टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। उसमें आपको पॉजिटिव मैं क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो बाबा कह रहे हैं वो अहंकार वाला मैं है, ये तो पुरुषार्थ का मैं है। मैं दो है, तीन, एक तो है मैं आत्मा वाला, दूसरा है मुझे ये करना ही है, ये बाबा ने सिखाया है, दृढ़ संकल्प करो ये मुझे करना है, मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगा। आपको IAS एग्ज़ाम देनी है तो आप क्या कहेंगे, बैठ के पढ़ाई ये करेंगे, योग करेंगे ना, यू हैव टू स्टडी, करंट अफेयर स्टडी करना पड़ेगा, ज्योग्राफी स्टडी पड़ेगा, हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा, फास्ट हैंड राइटिंग लिखने की स्टडी करनी पड़ेगी, मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, टॉपर से मिलना पड़ेगा, प्रीलिम्स इंटरव्यू और सब में क्या होता है वो स्टडी करना पड़ेगा, मेंस में क्या होता है, तब जाके आप कहीं कर सकते हो। वहाँ आप ये मत लाना कि मैं तो निरंकारी हूँ तो मैं कैसे करूँ, मैं नहीं, वहाँ पे तो यू हैव टू क्रिएट अ विजन बोर्ड, यू हैव टू क्रिएट अ कॉमेंट्री। स्टडी जो होती है ना, एग्जाम प्रिपरेशन एक अलग ही चीज़ है, एग्जाम प्रिपरेशन और ज्ञानी व्यक्ति अलग है। एक कार्डियोलॉजिस्ट है जैसे, और एक व्यक्ति कार्डियोलॉजी की एग्जाम दे रहा है, इसके पास अलग प्रिपरेशन होती है इसकी, इसके पास अलग प्रिपरेशन है, इसके पास ज्ञान है, पर ही जरूरी नहीं कि वो पास होगा। एग्जाम एक अलग ही चीज़ है, एग्जाम का ज्ञान से संबंध नहीं है। एग्जाम एक टारगेट के लिए मैं चाहिए और वो लाना होगा, मुझे करना है मैं करूँगा। हाँ तो वो ये आप कोई दूसरों को थोड़ी ना दिखा रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना। हाँ तो इट इज़ नॉट अहंकार, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पूछ लो, आपके प्रश्न से दूसरों का कल्याण हो सकता है। नहीं आपका हो गया, रुको पहले दूसरों को, लास्ट में आते हैं आपकी तरफ। किस में, पर्चिया में तो क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ। प्रतिज्ञा बार बार टूट जाती है, क्या करे। प्रतिज्ञा टूटनी है क्योंकि प्रतिज्ञा ही गलत है। जैसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से मैं पानी नहीं पीऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। अरे मुझे प्यास लग रही है अभी, मैं पानी प्रतिज्ञा, पानी प्रतिज्ञा, पानी प्रतिज्ञा, ये अभी कह प्रतिज्ञा ही गलत की है। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं किया की जाती है, प्रतिज्ञा करने की वास्तव में तो प्रतिज्ञा का अपना महत्व है, पर प्रतिज्ञा करने की जरूरत। आप क्या ये प्रतिज्ञा करते हो कि आज से मैं ये दरवाजा, ये जो दीवार है इससे नहीं जाऊँगा, ये जो दीवार है ना इस दीवार के थ्रू मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी प्रतिज्ञा कोई करता है क्या? नहीं, वो नेचुरल है, वहाँ से जाना ही नहीं है, जाना इधर से है रास्ते से, वो प्रतिज्ञा ही गलत है। तो प्रतिज्ञा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो सहज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग कि ये ऐसा, क्योंकि दमन हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। जैसे आपने संकल्प किया, अरे बाप रे ये तो फल खाते, कल से मैं फल खाऊंगा, क्या आया पोहा बना, ना मैं पोहा नहीं, मुझे फल खाना है, फल खाया और दुखी हो के बेचारे बाजू वाला पोहा खा रहा है, वो कह रहा है थोड़ा अचार लेके आओ, क्या अचार? नहीं नहीं फल, ठीक है। दोपहर तक निकाल दिया फल खा खा के, और दोपहर में तेज भूख लगी है, नहीं फल फल, उसको भी फल खा के ये किया, और शाम को फिर सारे बंधन हटा दिए, हटाओ ये फल बिल, फालतू है ये सब। जैसे एक गाँव में सारे कुत्ते मिल के डिसाइड करते हैं, इस मनुष्य समाज में हमारी बहुत बदनामी हो रही है, लोग हमें हीन भावना से देखते हैं मनुष्य, ये हमारे भोंकने की वजह से, आज से हम कोई भी भोंकेगा नहीं। तो सारे कुत्ते का जो सरदार होता है और सारे कुत्ते प्रतिज्ञा करते हैं आज से हम भोंकेंगे नहीं, एटलीस्ट 24 घंटे तक नहीं भोंकेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा मान नीचे जा रहा है भोंकने की वजह से। तो फिर बेचारे ऐसे दबे हुए सहमे हुए से रात के 12 बज जाते हैं, पर 12 बजते हैं तब रात का समय, तो बस अभी उनको क्या करूँ, उनका जो मेन सरदार होता है उसको इतनी बेचैनी होती, इतनी बेचैनी होती, ऐसा भोंकता है और पूरा सारे कुत्ते एक साथ भोंकने लगते, सारा गांव जग जाता है, क्या हो रहा है, कुत्तों के कौन सा एक आंदोलन हो रहा है, कोई कोई पेपर लीक तो नहीं हो गया? तो ये प्रतिज्ञा, दमन की प्रतिज्ञा है, उसका स्वभाव है भोंकना, वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं नहीं भोंकूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए ये जो प्रतिज्ञा इस टाइप की है ना, प्रतिज्ञा को अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, नीटली, डीपली, सो दैट यू डोंट नीड प्रतिज्ञा एट ऑल। इट शुड बिकम द वेरी नेचर ऑफ योर लाइफ, इट शुड बिकम द सेकंड नेचर ऑफ योर लाइफ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऐसा उसको इतना हद तक उसको समझ लेना है, वो स्वभाव बन जाए तो फिर प्रतिज्ञा नहीं रहे। आप कभी ये सोचते हो क्या कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ? अरे मैं स्त्री नहीं हुआ, मैं कन्फ्यूजन होता है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल, वो नेचुरल हो गया ना, वैसे वो नेचुरल हो जाए। और कोई प्रश्न है तो? ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें पढ़ो, इंग्लिश में लिखा हुआ पूछ लिया ना, आँखें टंग कर्मेंद्रियों को वश में कैसे करें? मैं जब भी अकेला होता हूँ तो काम वासना के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, काम वासना ने देयर आर नोन एज सेक्सुअल फैंटसीज, कंट्रोल कैसे करें, हस्तमैथुन जैसी क्रिया, इसलिए कहा ये जो किताबें हमने बताई आपको ब्रह्मचर्य की, जस्ट गो एंड स्टडी दीज बुक्स। तो एक दूसरा भी बहुत बड़ा एक बुक है, हाउ टू गेट रीड ऑफ मास्टरबेशन 100 वेज, पर ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंग्लिश में है, हम लोगों की एक ग्रुप है उसमें हमने बहुत सारा ब्रह्मचर्य का मटेरियल शेयर किया था एक बार। तो आप हम धीरज भाई को, आप एक काम करो, एक ना एक ग्रुप बनाओ, ये जितने लोग हैं, अंकित भाई एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ दिनों के लिए एक हफ्ते का ग्रुप रहेगा, एक हफ्ते के बाद ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस ग्रुप में आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हम सारा मटेरियल भेज देंगे, आप सारा ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है? उसमें कुछ किताबें भी भेजेंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजेंगे जो बहुत काम की चीज़ें हैं। ये जैसे ये देखो, ब्रह्मचर्य बुक बाय स्वामी ओमानंद, कॉइल्ड सर्पेंट, यूअर ब्रेन ऑन पोर्नोग्राफी, ये सारी बहुत सारी चीज़ें, सीमेन रिटेंशन मिराकल, चैस्टिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अपनी शक्तियाँ, 98 वेज टू स्टॉप मास्टरबेशन, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट बुक्स। इसको आप क्या कर सकते हैं, AI में डाल के ये जो बुक्स है इनको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है समझने में, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स, मेथड्स, वेज दी हुई है। मेक अ प्लान, हार्डली एनीथिंग इज एवर अचीव्ड विदाउट अ प्लान, अ सेट प्लान, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान। सो इफ यू डोंट, इफ यू वांट टू एंड योर हैबिट ऑफ मास्टरबेटिंग एंड एंड द गिल्ट फीलिंग, यू विल हैव टू डू इट, यू हैव टू प्लान इट आउट, यू हैव टू क्रिएट अ प्लान, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट क्विटिंग योर हैबिट ऑफ मास्टरबेशन एंड देन डू इट। तो ये ऐसी बहुत सारी, इग्नोर व्हाट अदर्स से अबाउट इट, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो एक ग्रुप में हम बहुत सारी चीज़ें भेज देंगे, जैसे ये वीर्य का महत्व के 108 बिंदु, ये टोटल 108 पॉइंट्स है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें होगी। नेक्स्ट
भाई जी, हम जब भी योग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई खींच रहा हो हमको, और ये भौवें चढ़ जाएंगी,
थोड़ा शीर्षासन ये सब करो, सारा चला जाएगा ये ये सब जो होता है ना, इनको संवेदनाएं कहा जाता है।
तो कभी कभी भाई जी हम मौन भी हो जाते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कहो 2 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, ऐसा भी हो जाता है, चलेंगे फिरेंगे खाएंगे,
वही ये सब जो चीज़ें हैं ना, फ्लक्चुएशंस होता है, माइंड कभी संसार की ओर जाता है, कभी लौकिक में आता है, कभी मौन की तरफ जाता है, फिर कभी बोलने की इच्छा होती है, ये सब चलते रहता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और अपने माइंड की स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा एकांत में जाओ, थोड़ा बैठो, कुछ अध्ययन करो, स्टडी करो, माइंड का ही अध्ययन करो, रोज़ डायरी लिखो कि आज मुझे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, रोज की डायरी लिखनी।
हमारे मन का खाली ये भ्रम है, ये
भ्रम, 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 100% भ्रम, इसको भ्रम ही समझना, अलौकिक अनुभूतियाँ तो समझना ही नहीं, अलौकिक अनुभूतियाँ 0.00001% होती है
जी।
बाकी जो कुछ हो रहा है, केमिकल लोचा, सब भ्रम है माइंड का, वो सब गड़बड़ है। हमारा भी मन सोचते रहता है, कभी कुछ दिखता है, लाइट दिखता है, कभी कुछ दिखता है, ब्रह्मा दिखता है, ये दिखता है, माताएं आती है कहती मुझे ये दिखा वो दिखा, मतलब वो ये चाहती कि हम तारीफ करें कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, ओरिजिनल तो दिखता ही नहीं पहली बात। ओरिजिनल के पीछे जाओ ही मैं, दिखने का लक्ष्य ही नहीं है। एक माता हमारे पास आती है ओपड़ी में, क्या है? मैंने कहा दिखता नहीं। क्या है? दिखता नहीं। बोले क्या देखना है? बोले सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। क्या? बोले परमधाम नहीं दिखता, सूक्ष्म वतन नहीं दिखता, मुझे आत्मा नहीं दिखती, बस वो एक ही है। दुखी है वो, 40 साल से ज्ञान में है पर एक ही है, दिखता नहीं। जब भी आएंगी यही चालू रोना, वो नीचे शिवमनी है ना, वहाँ रहती है, आएगी, क्या है? दिखता नहीं। अरे दिखता नहीं, अरे क्या है? दिखता नहीं, दिखता नहीं। 5 मिनट इशारा आ गया है।